इशिका जब बेहोश थी तब वो नींद में एक सपना देख रही थी, जो कि सपना नहीं उसी की जिंदगी का एक हिस्सा था। इशिका को कुछ बातें याद थीं, इस वजह से वो समझ सकती थी कि उसने जो देखा वो कोई सपना नहीं था। अचानक इशिका को कुछ बातें याद आईं, जहां मालविका ने इशिका से कहा था कि उसकी बेटी राजकुमारी की तरह पलेगी। अपनी बेटी का इशारा उसने आयशा की तरफ किया था। फिर इशिका ने अपने मन में कहा, हो सकता है कि मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि मिसेस सिंघानिया मेरी माँ हूँ, शायद इस वजह से मुझे ऐसा लगा। इशिका ने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी रियांश ने उससे पूछा, अच्छा तो मुझे बताओ क्या हुआ था जब तुम 3 साल की थी? कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग था क्या सब कुछ जिसे सोचकर तुम स्माइल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, इशिका ने जवाब दिया। वैसे भी वो इस बारे में रियांश से बात नहीं करना चाहती थी। रियांश ने भी ज्यादा नहीं पूछा, उसने इशिका के चेहरे की तरफ देखा। हालांकि वो एक दिन में ज्यादा इन्फ्यूजन नहीं ले सकती थी, इस वजह से उसे 2 से 3 दिन वहां पर रुकना था, लेकिन इशिका की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। इशिका ने टाइम पास करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, उसने ट्विटर खोला। उसके ट्विटर अकाउंट का नाम मिस एम था, जो डॉक्टर मर्चेंट का शॉर्ट फॉर्म था। ट्विटर पर उसकी अच्छी खासी फॉलोइंग थी और उसके काफी सारे फैन भी थे। उसके फैन फॉलोइंग होने का एक कारण ये था कि वो हमेशा सच का साथ देते हुए ही किसी भी टॉपिक पर अपनी राय रखती थी। इशिका ने देखा कि उसे एक मैसेज आया हुआ था, जो कि उसके एक फॉलोअर प्रिंस ने भेजा था। प्रिंस ने लिखा था, मैं आपको लगभग 2 सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, और जैसे आप बिना किसी डर के सच के साथ खड़ी रहती हैं, वैसे ही आज मैं भी सच के लिए खड़ा हूँ। उम्मीद है आप मेरे कामों से प्रभावित होंगी और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। इशिका को इस तरह के मैसेज आते रहते थे। उसने अपना मोबाइल रखा तो देखा सामने माहिर था, वो उससे मिलने के लिए आया था। वो हमेशा की तरह कम बात करने वाला और शर्मीले लड़के की तरह बिहेव कर रहा था। अंदर आते ही उसने नजरें झुकाकर इशिका को हेलो कहा। इशिका का मालविका की फैमिली के साथ कोई खास रिश्ता नहीं था, ऐसे में अब उसे आशीष की मौत का जिम्मेदार समझा जा रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी माहिर उससे मिलने के लिए आया था, ये देखकर इशिका थोड़ी हैरान हुई। उसके साथ इंस्पेक्टर माधव भी थे। क्या हुआ? इशिका ने उससे पूछा। मैं उनके साथ आया हूँ, बोलते हुए माहिर ने इंस्पेक्टर माधव की तरफ इशारा किया और आगे कहा, मैं लॉयर के पास गया था, उन्होंने बताया कि अगर मैं अपनी तरफ से तुम्हारे फेवर में बयान दूं तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। मेरे डैड कैसे थे ये हम सब में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। चिंता मत करो इशिका, तुम्हें 5 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी। मैं कोर्ट को बताऊंगा कि वो कैसे थे और तुम्हारी तरफ से गवाही दूंगा। इशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। माहिर आगे बोला, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं बहुत घबरा गया था। उनके साथ जो भी हुआ वो उसी के लायक थे। मेरी गलती की वजह से तुम्हें पुलिस पकड़ कर ले गई, मुझे पुलिस को कॉल ही नहीं करना चाहिए था। इशिका को उस हाल में देखकर माहिर को बहुत बुरा लग रहा था, इस वजह से वो ये सब कह रहा था। लेकिन जब माधव ने उसकी बातें सुनी तो वो सख्ती से बोला, तुमने जो भी किया वो सही था। तुम्हारा बाप कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया था तो पुलिस उसे सजा देती। इस तरह तुम लोगों को उसे मारने का हक नहीं था। माधव की बात सुनकर माहिर ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और वो गुस्से से फट पड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं इंस्पेक्टर, कि पुलिस उसे सजा देती। मेरा बाप जुआ खेलते हुए पकड़ा गया था, बहुत बार वो गलत काम करता था, तब मैंने आपको कॉल किया था, लेकिन आप उसे पकड़कर वापस छोड़ देते थे। उसकी वजह से हमारा घर चला गया, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब इशिका के साथ ये सब हो रहा है, तब आपकी पुलिस हमारी मदद करने के लिए नहीं आई। पुलिस सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए होती है, आप प्लीज ये बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। माधव को इतना कुछ सुनाने के बाद में माहिर रोने लगा। वो बोला, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, पर उन्होंने हमारी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी थी। जीते जी वो हमें चैन से जीने नहीं देते थे और मरने के बाद हमारे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ कर गए हैं। वो एक लालची आदमी था, वो मेरे पिता थे, लेकिन हाँ उनके मरने के बाद अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। उसकी बातें सुनकर माधव का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माहिर वहां गलत नहीं था, उन सबको यही लगता था इशिका की जिंदगी घर छोड़ने के बाद बेहतर हो गई थी, लेकिन सच पूरी तरह अलग था। माहिर को अपनी जिंदगी मुश्किल लग रही थी, लेकिन कम से कम आशीष ने कभी उसे भूखा तो नहीं रखा था। कुछ देर रोने के बाद माहिर को जब हल्का लगने लगा तो उसने इंस्पेक्टर माधव से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं बस अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, माधव ने उसका कंधा सहलाकर कहा। जब उनकी बातें खत्म हुई तो इशिका ने माहिर की तरफ देखा और सख्ती से कहा, मुझे तुम्हारे स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे लिए इतना सोचा वही काफी है, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है माहिर। इशिका, प्लीज जिद मत करो, हम सब जानते हैं कि ये सब अनजाने में हुआ है और तुम अपनी गलती को कोर्ट के सामने एक्सेप्ट कर लोगी। मैं तुम्हारे लिए बयान दूंगा, पुलिस तुम्हारा साथ देगी तो तुम्हें 3-4 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी, लेकिन तुम अपनी इसी जिद पर अड़ी रही तो तुम्हें अपनी जिंदगी के 10 से 12 साल जेल में बांटकर खराब करने होंगे, माहिर ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे पता है, लेकिन जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसे मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ, इशिका ने सख्त आवाज में काफी कॉन्फिडेंस से कहा। कुछ पल के लिए माहिर चुप हो गया, फिर उसने इंस्पेक्टर माधव से कहा, वो मेरे डैड थे, क्या मैं इस केस को यहीं पर रद्द करवा सकता हूँ? क्योंकि मुझे इशिका को सजा नहीं दिलवानी है और ना ही मुझे उनकी मौत से कोई फर्क पड़ता है, मुझे इस केस को आगे नहीं बढ़ाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये एक मर्डर केस है और काफी हाई प्रोफाइल भी बन चुका है, तुम आगे नहीं भी आओगे तो हम हैंडल कर लेंगे, माधव ने जवाब दिया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा इशिका, माहिर ने नजर झुकाकर कहा और फिर वहां से जाने लगा। जाने से पहले वो अचानक इंस्पेक्टर माधव के पास रुका और धीमी आवाज में बोला, क्या आप मुझे मेरे 20,000 रुपए लौटा सकते हैं जो उस वक्त नीचे जमीन पर गिर गए थे? मुझे उन पैसों की सख्त जरूरत है, मैंने उन्हें किसी से उधार लिए थे। सॉरी टू से, लेकिन आपको वो पैसे नहीं मिल सकते क्योंकि उन पर खून लगा हुआ है और उन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। केस क्लियर होने के बाद आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, माधव ने उसे सब समझाते हुए कहा। माहिर के लिए वो पैसे बहुत जरूरी थे, उसने नम आंखों से कहा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं नहीं मांगता, मैंने उन्हें वादा किया था कि मैं उन्हें जल्द ही लौटा दूंगा। एक स्टूडेंट के लिए 20,000 रुपए की क्या कीमत होती है वो सब समझ सकते थे, वो पार्ट टाइम जॉब करके वो पैसे चुकाने वाला था। माहिर वहां से जाने को हुआ तभी इशिका ने पीछे से कहा, रुको माहिर, मैं दिशांक को कहती हूँ कि वो तुम्हें एक बार के लिए पैसे दे दे। थैंक यू इशिका, जैसे ही पैसे वापस मिलेंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा, माहिर ने हल्का मुस्कुराकर कहा। इशिका ने दिशांक को मैसेज करके पैसे लाने को कहा। कुछ ही देर में दिशांक 20,000 रुपए के साथ आ गया था, उसने उसे माहिर को सौंप दिया था।
थैंक यू सो मच इशिका, मैं जानता हूँ डैड ने भी तुमसे बहुत पैसे लिए हैं, जब मेरे पास कोई जॉब होगी तब मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, माहिर ने मुस्कुराकर कहा। कोई बात नहीं, मेरे पैसे अच्छे काम में यूज होंगे, तो अगर तुम मुझे वापस नहीं भी लौटाओगे तो चलेगा, इशिका ने जवाब दिया। वो लोग बात कर रहे थे तभी अचानक फोटो क्लिक करने की आवाज़ आई। एक अनजान लड़का कमरे के साथ अंदर घुस आया था और उन्हें शूट करते हुए बोला, ये देखिए विक्टिम का बेटा यहाँ पैसे लेने के लिए आया है ताकि इस केस को रद्द कर सके, आजकल रिश्तों से ज्यादा जरूरी पैसे हो गए हैं। शूट करते हुए उसने कैमरा इशिका की तरफ किया जो अब काफी बेहतर लगने लगी थी। उसने इशिका का इंट्रो देते हुए कहा, और ये वो लड़की है जो बीमार होने का बोलकर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, मुझे तो ये अच्छी खासी नजर आ रही है, अमीरों के पास से बाहर निकलने के कई तरीके होते हैं, ये आज समझ आ गया है। इंस्पेक्टर ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन वो लड़का जिद्दी था, फिर भी शूट कर रहा था। उसने कहा, आप लोग सच को दबाने की कितनी भी कोशिश करो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरह सच के साथ खड़ा रहूँगा जैसे मेरी आइडल मिस एम खड़ी रहती है। तुम जानते भी हो एक विदेशी कंपनी गलत दवाइयाँ बनाकर लोगों को गुमराह कर रही थी, कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने की और उस कंपनी के खिलाफ जाँच उन्हीं की वजह से शुरू हुई थी। उसकी बातों से इशिका समझ गई थी कि वो इशिका की बात कर रहा है। अचानक इशिका को कुछ सूझा तो उसने पूछा, तुम प्रिंस हो? इशिका उस प्रिंस की बात कर रही थी जिसने थोड़ी देर पहले उसे मैसेज किया था। वो लड़का हैरानी से बोला, हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? इशिका ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला और होम पेज पर प्रिंस का अकाउंट निकालकर दिखाया। प्रिंस ने उसे गलत तरीके से समझते हुए कहा, तुम मुझे धमकी देना चाहती हो? हाँ ठीक है, मेरे ट्विटर अकाउंट से तुम्हें मेरे कंपनी के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं शांत नहीं रहने वाला हूँ, तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा इशिका सिंघानिया। कोई बात नहीं, तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, अभी अभी तुमने अपनी एजुकेशन पूरी की है इस वजह से थोड़े अग्रेसिव हो जाते हो, पर धीरे धीरे सीख जाओगे, इशिका ने शांति से कहा। वो उसके बारे में काफी कुछ जानती थी, ये देखकर प्रिंस हैरान था। प्रिंस आगे कुछ पूछ पाता उससे पहले माधव ने उसका कैमरा छीनते हुए उसे बाहर की तरफ घसीटते हुए कहा, यहाँ किसी का आकर शूट करना अलाउड नहीं है, अगर आगे से पुलिस के मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की है तो तुम्हारे खिलाफ भी केस बनाकर अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर ने उसे वहां से निकाल दिया था। जब दरवाजा खुला तो इशिका ने देखा क्रिस्टल वही दरवाजे के आगे खड़ी उसी को देख रही थी। वो तुरंत दूसरी तरफ पलट गई। उसे देखकर इशिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोली, तुम आज भी बिल्कुल नहीं बदली, कोई भी गलती करती हो तो फिर सामने वाले को फेस नहीं कर पाती। इशिका ने उसे बुरा नहीं समझा क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी थी, कोई भी उसकी बीमारी को आसानी से पकड़ नहीं पाता था, डॉक्टर को भी इसे समझने में काफी टाइम लगा था। क्रिस्टल जल्दी से वहां से चली गई, इंस्पेक्टर माधव भी वहां से चले गए थे। दिशांक अंदर आया और उसने इशिका से पूछा, बॉस क्या आपको पता है कि आशीष का खून किसने किया था? इशिका ने उसे देखकर मुंह बनाया। दिशांक समझ गया था कि वो इस बारे में जानती है, लेकिन इशिका ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। इशिका का ध्यान हटाने के लिए दिशांक ने हल्का हंसते हुए कहा, अरे देखो तो वो रिपोर्टर जो अभी अंदर घुस आया था वो फिर से लाइव स्ट्रीम कर रहा है। प्रिंस ने इस बार अपने मोबाइल से शूट करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसका कैमरा इंस्पेक्टर ने ले लिया था। प्रिंस ने शूट करते हुए कहा, मुझे मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करनी पड़ रही है क्योंकि मेरा कैमरा छीन लिया गया है। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने उसके बेटे को उस लड़की से पैसे लेते हुए देख लिया था। अब जरूर देखना, वो लड़की बेगुनाह साबित हो जाएगी। प्रिंस की लाइव स्ट्रीम के नीचे कमेंट्स में सब इशिका को भला बुरा कह रहे थे और साथ ही वो माहिर को भी कोस रहे थे कि उस जैसा बेटा अपने बाप की मौत का फायदा उठाकर पैसे कमा रहा है। प्रिंस का लाइव स्ट्रीम चालू था तभी वहां बीच में क्रिस्टल आई और उसने कहा, मैं इस मामले में कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर क्रिस्टल डिसूजे, हमने आपके बारे में काफी सुना है कि आप सच का साथ देती है। प्लीज आप बताइए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है? क्या अनीमिया जैसी बीमारी का बहाना बनाकर जमानत लेना सही है? प्रिंस ने कहा और फिर क्रिस्टल को शूट करना शुरू कर दिया। वो झूठ नहीं बोल रही है, उसे सच में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। हमसे भी समझने में गलती हो गई थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी से पकड़ में नहीं आती। पुलिस हमेशा न्याय का साथ देती है और वो किसी को भी झूठा बहाने बनाकर जमानत नहीं लेने देंगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आशीष दास को जिसने भी मारा है उसे सजा होगी, लेकिन इशिका सिंघानिया ने उसे नहीं मारा है, क्रिस्टल ने काफी कॉन्फिडेंटली कहा। आप उनका पक्ष क्यों ले रही है? अगर उन्होंने सच में उसे मारा होगा तो क्या होगा? प्रिंस ने भौहें उठाकर पूछा। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगी और ये वर्दी कभी नहीं पहनूंगी, क्रिस्टल ने सख्ती से कहा। क्रिस्टल ने इशिका का साथ देने के लिए अपने सबसे बड़े सपने यानी कि अपने फोरेंसिक डॉक्टर की जॉब को दांव पर लगा दिया था, जिसे देखकर सब हैरान थे, यहाँ तक कि खुद इशिका भी।